हर पल ही तुझको देखूं मन की आंखों से, हर पल ही तुझको देखूं बाबा खड़े है पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे।
किसी एक गुरुकुल के एक छात्र ने अपनी सारी शिक्षाएं पूर्ण की और बाद में वो समय आया विदा का, और उसकी इच्छा थी कि अपने गुरु को कुछ दू, कुछ भेंट। परंतु गरीब था, कुछ था नहीं। उसने अपने मित्र से ये बात कही कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मित्र ने पूछा, तुम्हें क्या देना है? उसने सोचा और कहा, कुछ पैसे, कम से कम 5 अशरफिया। मित्र ने कहा, मैं जानता हूं इस देश का जो राजा है बहुत दानवीर है, और सुबह सुबह जब वो निकलता है और जो पहला याचक उसे मिलता है, जो वो याचक मांगे वो राजा दे देता है, तुम ऐसा करना, सुबह सुबह चले जाना राजमहल के द्वार पर, तुम्हें जरूर मिल जाएंगे अपने पैसे। वो छात्र रात भर सोता नहीं, सुबह सुबह अंधेरे में ही राजभवन में पहुंच जाता है द्वार पर। राजा सुबह टहलने के लिए बाहर निकलते हैं और वो कहता है, राजन मैं पहला याचक हूं, कुछ मांगने आया हूं। राजा कहता है तुम्हें क्या चाहिए मांगो, जो कहोगे वो दूंगा। तब वो एकदम से स्तब्ध हो जाता है, जो कहोगे। मन में सोचने लगता है पांच बहुत कम हो गया, फिर तो संख्या बढ़ती जाती है, क्यों ना 50 मांगू। फिर सोचता है 500, फिर सोचता है 5000 भी तो मांग सकता हूं, 5 लाख भी तो मांग सकता हूं। और फिर उसको अपने गुरुकुल के गणित के दिन याद आते हैं कि गुरुजी कहते थे गणित सीखो, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और जितनी अंतिम संख्या है उतनी मुझे याद आ रही है, और तब मैं जाके रुक गया। अच्छा होता कि और ज्यादा सीख लिया होता, क्योंकि अब प्रश्न पैसों का नहीं संख्या का था। और जब राजा उसे देखता है, ये सोच ही रहा है, राजा कहता है मांगो, मेरा राज्य इतना समृद्ध है कि आज तक तो कोई आया ही नहीं, तुम ही पहले याचक हो, जो मांगोगे वो पाओगे। वो कहता है मुझे थोड़ा समय दो, आप थोड़ा चक्कर लगा के आओ गार्डन में। और वो सोचने लगता है, बहुत सोचने लगता है, कितना मांगू कितना मांगू। और फिर सोचता है संख्या क्यों मांगू, जब वो कह रहा है सब कुछ तो क्यों ना पूरा राज्य ही मांग लूं, और राजा से कहूं कि बस यहीं से तुम निकल पड़ो बाहर। राजा आता है, पूछता है क्या मांगते हो, मांगो। वो कहता है आज से राज्य मेरा हुआ, आप अभी से यहीं से निकल पड़ो बाहर। तो राजा एकदम घुटनों के बल गिरता है और कहता है हे भगवान, आखिर वो दिन आया आज, तेरा लाख लाख धन्यवाद, आखिर तूने किसी को भेज ही दिया। उसे तो एकदम ही आश्चर्य हो जाता है, ये क्या हुआ। उसने तो सोचा था राजा घबरा जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, पश्चाताप करेगा ये क्या मांग लिया। राजा तो और ही खुश होता है, तब उसको धक्का बैठता है। वो कहता है आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं। राजा कहता है 30 साल से ये राज्य देख रहा हूं, अब मैं छूटना चाहता हूं, किसी के लिए तो प्रार्थना कर रहा था कोई आए और ये सब संभाल ले और मैं यहां से निकल जाऊं और अपनी साधना करूं। तब इसके मन में अब थोड़ा सा कंफ्यूजन। वो कहता है अब तुम अंदर रह के देख लो, मैं तो रह लिया, अब तुम देखो, और मैं अनुभवी हूं। तब वो युवक कहता है कि नहीं नहीं मुझे और थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, आप एक दूसरा चक्कर लगा के आओ। राजा अंदर ही सोचता है शायद ये नहीं रहेगा मैं जब आऊंगा तब, और राजा दूसरा चक्कर लगा कर आते हैं तो देखता है वो युवक वहां है ही नहीं। वो 5 असरसियां जो उसको चाहिए थी वो भी उसने छोड़ दी, क्यों वो भाग गया, उसके पास शायद कोई एक अंतर्दृष्टि थी, शायद कोई आंख जिसने देख लिया कुछ, एक ऐसी आंख जिसने ये देख लिया सत्य क्या, सत्य क्या सार क्या, सार क्या, एक ऐसी आंख थी उसके पास शायद जो अब जागृत हो गई और जिसने देख लिया ये सारा साम्राज्य व्यर्थ है। जब ये व्यक्ति जो कि मेरे पिता की उम्र का है वो ये कहता है, उसके 30 साल का अनुभव है और वो तो खुश हो रहा है सब कुछ छोड़ने के लिए, और मैं सब कुछ फिर से पकड़ लूं, एक ऐसी दृष्टि उसके अंदर जागती है कि फिर वो वहां नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। धर्म इस दृष्टि को एक नाम देता है, तीसरी आंख, द थर्ड आई। और इस तीसरी आंख पर बहुत काम हुए हैं, बहुत संशोधन हुए हैं। तिब्बत का एक लामा है जिसने तो अपनी पूरी किताब ही लिख दी थी, द थर्ड आई, और उसमें उसने लिखा था इस थर्ड आई पर ऑपरेशन किए जा सकते हैं, इस थर्ड आई से बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जब लंदन में ये किताब पब्लिश हुई पहली बार 1960s में या 50s में, इसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि बोनसंग रैंपा नाम का वो ऑथर था, तिब्बत का लामा, यहां तक ऑब्जेक्शन लिया कि सरकार ने इस व्यक्ति के पीछे जासूस लगाए, ये किताब कहां से निकली, कैसे निकली, किसने लिखी, और पता चला लिखने वाला व्यक्ति तो कोई ब्रिटिश का ब्रिटिश व्यक्ति है, कोई गरीब है, और ये तो तिब्बत का है ही नहीं लामा। उसको पूछा गया तुमने सब चीजें कैसे लिखी, उसने कहा ये मैंने ही लिखी है, पर तुम्हारा नाम तो दूसरा है, सिटीजनशिप तो ब्रिटेन की है, तुम तो तिब्बत कभी गए ही ना ही वहां की भाषा जानते हो। उसने कहा कि मैं जब झाड़ पर था और गिर पड़ा तो ये जो लामा था उसकी आत्मा मुझ में प्रवेश कर गई और उसने ये किताब लिखी। और ऐसी एक ही किताब नहीं, लगभग 15-20-30 किताबें हैं जो कि एक साथ बहुत सारी पब्लिश हुई। इतना भयंकर विरोध हुआ परंतु बाद में बेस्ट सेलर कहलाई गई। उसमें ये सारे प्रयोग लिखे हुए हैं तीसरी आंख के, कैसे इस तीसरी आंख का ऑपरेशन। उसने कहा कि मैं किसी जन्म में लामा था और यहां पर किसी ने ड्रिल की और ये आंख मेरी जागृत हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें उसने, रहस्यमयी चीजें उसमें लिखी जो कि बहुत विवादास्पद थी। उसके लिए उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, पर वो एकदम स्पष्ट था। वो कहता था उसकी आत्मा मुझ में प्रवेश कर गई और उसी ने ये किताबें लिखी। इतनी गहरी उसमें बातें थी, परंतु इस तरह के जो प्रयोग है संसार में होते रहे हैं अलग अलग प्रकार के, वो कितने सत्य हैं पता नहीं। उसमें पीछे, उसके पीछे शायद झूठ और आडंबर और पाखंड भी हो सकता है, पता नहीं, पर ऐसे प्रयोग होते रहे संसार में। द थर्ड आय पर तो बाबा ने दो गिफ्ट हमको दी है, लास्ट संडे एक दी और आज एक दी। कौन कौन सी? वैसे मुरलियों में कई बार बाबा कहते हैं ये बात अगली बार बताएंगे और वो अगली बार कभी नहीं आती, पर इस बार आ गई। जो पिछली बार कहा था कि तीसरे नेत्र के बारे में फिर कभी सुनाएंगे, तो तुरंत दो दिन के बाद ये मुरली चली। वो 21 की थी, ये 23 की है, जनवरी 85। तो लास्ट संडे बाबा ने दिव्य बुद्धि के बारे में 5 बातें बताई थी। दिव्य बुद्धि क्या है? सबसे पहली बात, गिफ्ट है। इस गिफ्ट को क्या करके रखना है? संभाल के रखना है, नहीं तो माया इसे चुरा ले जाएगी। दूसरा, ये दिव्य बुद्धि क्या है? छत्र छाया। माया की छाया यदि पड़ी तो ये छत्र उड़ जाएगा। तीसरा, ये दिव्य बुद्धि क्या है? विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो इससे। सूक्ष्म वतन, परमधाम, सतयुग, जहां चाहो वहां जा सकते हो। जैसे वो लोग विमान से राख गिराते हैं हिमालय पर या नदियों में, वैसे तुम लाइट माइट स्टेज में स्थित हो जाओ और शुभ भावना, शुभ कामना की किरणें फैलाओ। चौथा, ये दिव्य बुद्धि क्या है? लिफ्ट है, कहीं पर भी जा सकते हो, बीच में अटक ना जाए, ना ऊपर ना नीचे, ऐसा ना हो जाए। और स्विच है स्मृति, फ्लाइट का भी स्विच है स्मृति, स्विच ऑन हो। उसके बाद में ये दिव्य बुद्धि क्या है? एक गोल्डन कंटेनर है, दिव्य पात्र, सोने का पात्र है, इसमें दूसरी कोई एलॉय मिक्स ना हो, सिल्वर कॉपर कुछ भी मिक्स ना हो, मन मत पर मत कुछ भी मिक्स ना हो। तो लास्ट संडे की मुरली थी दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाप ने तुम्हें दी है। आज क्या दिया? क्या दिया? दिव्य नेत्र दिया। कौन किसको देख रहा है, बाप है त्रिकालदर्शी और हम त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी, ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो आज भी बाबा ने एक चीज हमको दी, उसका नाम है तीसरा नेत्र। जैसे दिव्य बुद्धि की 5 बातें थी, वैसे दिव्य नेत्र की भी तुलना 5 चीजों से की है। सबसे पहला, ये दिव्य नेत्र एक सौगात है, तोहफा है, गिफ्ट है, और हर एक को कितना मिला है, 100%, हर एक को 100% मिला है, शक्तिशाली गिफ्ट मिली है। परंतु नंबर वार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि क्यों सब कुछ शक्तिशाली और कुछ परसेंटेज है, क्यों? 3 कारण। कौन से 3 कारण? कायदे, रूल्स, मर्यादाएं, श्रीमत, दूसरा परहेज, और तीसरा अटेंशन। जो जितना कायदे प्रमाण है उसकी गिफ्ट उतनी शक्तिशाली है, वो स्वयं उतना शक्तिशाली है। जो जितना परहेज कर रहा है, और परहेज कौन सी है, श्रीमत की परहेज। एक जगह कहा श्रीमत परहेज है, श्रीमत दुआ है, श्रीमत दवा है। अटेंशन कितना है, सारे दिन भर जहां अटेंशन है, सारे दिन भर जहां श्रीमत पर है, सारे दिन भर जहां परहेज है, परहेज अर्थात नहीं, क्या नहीं, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं देखना है, अगर ये श्रीमत, अगर ये परहेज बार बार उल्लंघन होता है तो ये नेत्र शक्तिशाली नहीं होगा। बाबा ने कहा ये नेत्र यदि शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन 3 चीजों का पालन करना पड़ेगा। कायदे प्रमाण नंबर वार है, कायदे पर हम कितना चल रहे हैं। यदि रोज रोज ही श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, यदि रोज रोज ही अमृत वेले में गड़बड़ हो रही है, यदि रोज रोज ही मुरली का चिंतन नहीं हो रहा है, केवल सुनना सुनाना हो रहा है। बाबा ने कहा यह सुनना सुनाना काम किसका है, गोपियों का नहीं, उद्धव का। वो उद्धव है, कृष्ण के साथ था, कंस को मारकर जब कृष्ण मथुरा थे तो दिखाया है। उद्धव चाहता था कि मुझे पदवी मिल जाए महर्षि की, और बहुत शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सब कुछ पढ़ा, और जब कृष्ण को लगा कि इसमें अहंकार है तो कहा कि जाओ गोपियों को जरा सिखा के आओ, तुम इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े योगी, गोपियों को भी सिखाओ थोड़ा, क्योंकि जब तक गोपियां मुझे भूलती नहीं तब तक मैं अपने अवतार कार्य की आरंभ नहीं कर सकता। उनका मोह बंधन है मेरे लिए, इसके लिए जाओ और उनको सिखाओ। और उद्धव आता है गोकुल, आते ही थोड़ी सी गर्मी होती है, लगती है उसको, क्योंकि उसमें अंदर ज्ञान की गर्मी थी, परंतु गोकुल में तो आग लगी थी प्रेम की। और वो गोपियों को बिठाता है और अपने प्रवचन चालू करता है, सभी गोपियां बैठती है और सुनती है उसको, कितनी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें, ब्रह्म क्या है, अवतार क्या है, सारी गोपियां सुनती है। उसे इतनी खुशी होती है कि मैं इनका उद्धार करने आया हूं, बेचारी अज्ञानी, इनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना श्लोक जानती है, ना संस्कृत जानती है, कुछ नहीं जानती है, मैं इनको सिखाऊंगा। और फिर एक गोपी पूछती है, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है पर मैं रखूं कहां, तन में मन में रोम रोम में कृष्ण बसा है, तुम्हारे ज्ञान के लिए जगह ही नहीं है। दूसरी गोपी कहती है, तुम हमें क्या सिखाने आए हो कि कृष्ण कोई एक अवतार है, वो आया अवतार कार्य के लिए, पर हम तो उसके साथ यहां पर नाचती थी, यहां हम उसके साथ खेलती थी, वो कृष्णमयी हो चुकी है, सारी गोपियां पागल सी हो गई है, वो उनको ज्ञान सिखाने आया था, उनको जो कि प्रेम में डूब चुकी है और आता है कुछ दिनों के लिए, 6 मास रहता है, आखिर में साष्टांग दंडवत करके वापस आता है और ये समझता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, जो पाया इन्होंने पाया, मेरे पास तो केवल ज्ञान है। बाबा ने कहा सुबह कि उद्धव अर्थात ज्ञान केवल सुनने सुनाने वाले, गोपी अर्थात प्यार के अनुभव में लगन में मगन, सारे संबंधों की अनुभूति करने वाले एक बाप से, वो गोपियों की अवस्था है। उन्हें कुछ पता नहीं संसार में क्या चल रहा है, उन्हें इससे भी कोई लेना देना नहीं कि कृष्ण कौन था और उसका क्या अवतार कार्य है, वो तो बस कृष्णमयी है, डूब चुकी है उसके प्यार में। कृष्ण गाती गीते, कृष्ण ध्याति चित्ते, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, कृष्ण का ध्यान करते करते ही कृष्णमयी हो गई है, ऐसी उनकी अवस्था है। तो दिव्य नेत्र अर्थात सबसे पहली बात क्या है, वो सौगात, गिफ्ट, तोहफा है, प्रेजेंट है, उपहार है जो भगवान ने हमें दिया है। तो सुबह उठते ही ये गिफ्ट बाबा से ले लेनी है कि सारे दिन भर ये आंखें क्या देखे क्या ना, इन आंखों से तो देखना ही नहीं है, तीसरी आंख से देखना है जो रहस्यमयी है, अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। तो कायदे प्रमाण, दूसरा परहेज, बाबा ने किन किन बातों की परहेज बताई है, अपनी डायरी में, अपनी किताब में या मन के ऊपर बड़े अक्षरों में लिख के रखना है, बाबा ने मना किया है, कौन सी चीजें ऐसी है जो मैं कर रहा हूं और जो करनी नहीं है, बाबा ने मना किया है, परहेज। और तीसरा अटेंशन, अवधान, ध्यान, निरंतर स्वयं को ही देखते रहना है, अपने ऊपर अटेंशन देते रहना है, कहां गलती हुई, कहां श्रीमत टूटी, क्या स्वप्न में वो ऐसा कुछ आ रहा है, शायद दिन भर जरूर कुछ ना कुछ अंतर्मन में गया है इसलिए तो दिखाई दिया कुछ। तो पहला दिव्य नेत्र क्या है, सौगात। दूसरा दिव्य नेत्र है दूरबीन। दूसरा दिव्य नेत्र क्या है, दिव्य दूरबीन है। उस दूरबीन से क्या होता है, दूर की चीजें समीप दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा ने कहा दिव्य नेत्र अर्थात दूर की चीजें समीप देख सकते हो और स्पष्ट देख सकते हो, जैसे उदाहरण दिया परम धाम का, जैसे वो परम धाम उसको तुम यहां देख सकते हो, संसार वाले साइंस वाले कहां तक देख सकते हैं, सूरज को चांद को सितारे को देख सकते हैं, परंतु तीन लोक को और तीन काल को केवल तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है। देवताओं के पास भी तीसरा नेत्र नहीं है, देवताएं दो नेत्रीय और तुम त्रिनेत्रीय हो। तीन लोक को देख लेना, तीन काल को देख लेना, दूर को देख लेना, समीप देख लेना, स्पष्ट देख लेना, ये अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। मैं कहां खड़ा हूं इस ब्राह्मण जीवन में, इस समय जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक क्या पाया क्या खोया, यदि वो गलती न की होती जो की तो आज शायद पुरुषार्थ के इस मार्ग में मैं बहुत आगे होता, शायद वहां नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद ऐसी कुछ बातें आई, ऐसे कुछ ग्रहण लग गए और ग्रहचारी बैठी कि न चाहते हुए भी उसमें फंसते गए, धंसते गए, और जब जब निकला तब तक पश्चाताप हुआ, परंतु फिर कोई एक नया दलदल। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र अर्थात अब देख लेना स्पष्ट त्रिलोक को, त्रिकाल को, दूर की चीजों को यहां देख लेना। तो ये क्या है, तीसरी आंख दूरबीन। तीसरा अनुभव की आंख। तीसरा नेत्र क्या है, अनुभव की आंख। इससे तुम 5000 साल पहले हुई बातों को कैसे देखोगे, जैसे कल की बात थी। कल देवता, फिर देवता, आज फरिश्ता, फिर देवता, जैसे सामने खूंटी पर लटकी हुई है ड्रेस, सजी सजाई, अभी जाके पहनू। उदाहरण दिया ब्रह्मा का, उसको कैसा नशा था। तो निरंतर ये चक्र फिराते रहना है, हम ही थे, हम ही है, हम ही बनेंगे, ये अनुभव की आंख है। और यहां बाबा ने एक चेकिंग की बात कही है, चेक करो ये नेत्र कितना शक्तिशाली है। जब नेत्र कमजोर होता है तो चीजें दिखती नहीं है, बादलों के पीछे, पर्दे के पीछे छिप जाती है। हम देवता थे, थे का पर्दा बीच में आता है। कौन सा पर्दा, थे का पर्दा। और यह हम मनके की भी बात की और पर्दे की भी बात की, निश्चय का पर्दा और स्मृति का, मन का, दोनों ही शक्तिशाली हो तब ये नेत्र से सब कुछ वैसा दिखाई देगा जैसी चीजें है, नहीं तो कंफ्यूजन, वो नहीं देख पाओगे जो देखना है। और ये केवल अपनी ही आंख पर भरोसा किया जा सकता है, किसी दूसरे की आंख पर नहीं। अकेले तक पहुंचना है तो अकेले ही चलना होगा, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। यहां कोई दूसरा साथ नहीं है, किसी और की आंख काम नहीं आएगी, मुझे अपनी आंख को, अपने आप को ही जगाना होगा, खोलनी होगी ये आंख। और खोलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे शांत करना होगा, अपने आप खुल जाएगी वो। जैसे दिखाया है एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसकी आंख, वो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, डॉक्टर आता है कहता है आज ही ऑपरेशन करा लो, शायद दिखेगा तुमको। वो कहता है मुझे क्या आवश्यकता है, मेरे 8 बेटे हैं, उनकी 16 आंखें, मैं उन्हीं से देखूंगा, 8 बहू है उनकी 16 आंखें और एक पत्नी उसकी 2, कितने हुई 34 आंखें है मेरे पास, मुझे अपने आंखों की आवश्यकता ही नहीं, ये सब मेरे अपने हैं, यही मेरा सहारा है, उनके होते हुए मैं क्यों कराऊं। और उसी रात उस घर को आग लगती है और 34 आंखें घर के बाहर भाग जाती है और वो अंदर चिल्लाता रहता है, मेरी आंख, मेरी आंख, मेरी आंख। पर आंखों को तो अपने जान की परवाह थी और वो सारी आंखें बाहर, और वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर जलकर भस्म हो जाता है। तब सोचता है मरते मरते कितना ना अच्छा होता कि मेरे पास मेरी अपनी आंखें होती, किसी दूसरों की आंखों से कब तक मैं देखता था। इसके लिए अपनी आंख स्वयं खोलनी है, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। ये अपना अकेले का पुरुषार्थ एकांगी पगडंडी है, इसमें अकेले ही चलना है, अकेले तक पहुंचना है तो अकेले ही चलना होगा। कोई आए ना आए, कोई साथी बने या ना बने, भगवान को साथी बना लिया और किसी देहधारी की आवश्यकता नहीं। देहधारी कितना भी अच्छा साथी हो फिर भी उसमें कुछ दोष है, कौन से, बीमार पड़ गया तो, या मर गया तो, या आने से ही इनकार कर दिया, या बीच में ही धोखा दे दिया तो, पहले बहुत कसमें वादे उठाए कि तुम्हारे साथ साथ चलेंगे अंतिम पड़ाव तक, और बीच में ही भाग गए। देहधारियों का भरोसा नहीं। तो तीस ये आंख क्या है? अनुभव की आंख है। तीसरा नेत्र क्या है? अनुभव की आंख। हमारा कर्तव्य है इसको शक्तिशाली बनाना। दो चीजें यहां पर बाबा ने बताई, निश्चय का पर्दा और दूसरा स्मृति का मन का। कौन सा निश्चय? ब्राह्मण जीवन में कौन से निश्चय की आवश्यकता है? ये सब आपके लिए होमवर्क। बाप पर, ड्रामा पर, स्वयं पर और परिवार पर, ये चार छोड़कर किस निश्चय की आवश्यकता है इस पर चिंतन करना है। ऐसे कौन से निश्चय है ब्राह्मण जीवन के? क्या हमें संपूर्ण निश्चय है? बाबा ने कहा संपूर्ण निश्चय बुद्धि तो केवल आठ ही होंगे, तो बाबा की शायद कुछ और परिभाषा है निश्चय की। स्मृति का मन का, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। स्मृति और उसका मन का दोनों स्पष्ट हो, बाबा ने कहा। अगला ये दिव्य नेत्र क्या है? चौथा शक्तिशाली यंत्र, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये शक्तिशाली यंत्र है तो नेचुरल रूप से, सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से सभी को क्या देखेंगे? आत्मा, और सबकी विशेषता देखेंगे। यदि ये नेत्र ही कमजोर है तो क्या दिखाई देगा? काले काले दाग धब्बे, अर्थात कमजोरी। इसका दूसरा अर्थ यह भी है, यदि हमें दूसरों की कमजोरी दिख रही है अर्थात हमारा नेत्र कमजोर है। यह दूसरा भी अर्थ निकल रहा है। यदि हमें दूसरों की कमजोरी ही दिखाई दे रही है तो हमारा जो नेत्र है वो कैसा है? कमजोर है। इस नेत्र पर काम करना है, इस नेत्र को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि यदि पावरफुल यंत्र है, साइंस का उदाहरण दिया, जैसे वो लोग ग्लास के द्वारा देख लेते हैं जर्म्स को, वैसे तुम माया के जर्म्स को भस्म कर देते हो, रोग को, इस नेत्र के द्वारा। तो यदि ये नेत्र शक्तिशाली है तो सहज रीति से आत्माएं दिखेगी। ये नहीं, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये शरीर नहीं, ये मुश्किल नहीं होगी। सहज तो कितना महत्वपूर्ण है ये वरदान प्राप्त करना दिव्य नेत्र का। काल्पनिक कहानी है, सिकंदर जब भारत आया, उसने देखा एक फकीर जा रहा है और उसके हाथ में एक चमकती हुई वस्तु है। वो पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहता है नहीं बताऊंगा, इतनी मजाल नहीं बताऊंगा, पता नहीं मैं कौन, सिकंदर महान। वो कहता है बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? वो कहता है नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हो, सिकंदर महान, आधा विश्व जिसने जीत लिया। वो कहता है बताओ। वो कहता है नहीं बताऊंगा। और उत्सुकता जागती है, क्या है आखिर? वो फकीर कहता है कि तुमने जितना सामान लूटा होगा उससे भी ये अधिक शक्तिशाली और कीमती और भारी है। वो कहते हैं अच्छा, लाओ तराजू। और बहुत बड़ा तराजू लाया जाता है। सिकंदर का सारा लूटा हुआ धन, जागीर, संपत्ति, हीरे जवाहरात एक पलड़े में। और फिर वो व्यक्ति, वो फकीर अपनी वो चमकीली वस्तु दूसरे पलड़े में डालता है, और जैसे ही डालता है ये पलड़ा नीचे और सिकंदर का पलड़ा ऊपर। सिकंदर को तो आश्चर्य हो जाता है, यह है क्या, कौन सी वस्तु है ये चमकीली जो तुमने अपने पलड़े में डाल दी, मुझे बताओ। और ज्यादा उत्कंठा। वो फकीर कहता है दो मिनट रुको, और वो मिट्टी लेता है और उस मिट्टी को उस चमकीली वस्तु पर डालता है, थोड़ी सी मिट्टी, और जैसे ही डालता है वो पलड़ा ऊपर और सिकंदर का पलड़ा नीचे। और आश्चर्य होता है सिकंदर, तो ये क्या है, यह है क्या, कौन सी वस्तु है ये? अब वो थोड़ा विनम्रता से पूछता है, पहले अहंकार था, अब थोड़ी जिज्ञासा जागी है। और ज्ञान तो तभी आता है जब जिज्ञासा हो और विनम्रता हो, अहंकार ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। वो पूछता है, बताओ ये है क्या? वो कहता है, ये मनुष्य की आंख है, अगर धूल पड़ जाए तो मिट्टी के समान है, अगर धूल नहीं तो संसार का सारा साम्राज्य एक तरफ, उससे भी ये शक्तिशाली है। यदि इस आंख पर धूल पड़ जाए तो कुछ नहीं दिखता। बाबा ने कहा, आंख यदि कमजोर है तो दूसरों की कमजोरी दिखेगी, काले दाग और धब्बे दिखेंगे, कालापन दिखेगा आत्मा का। यदि आत्मा, यदि नेत्र शक्तिशाली है तो विशेषताएं दिखेगी। अर्थात यदि विशेषताएं नहीं दिख रही है तो क्या हुआ, आंख कैसी है, कमजोर। अब इस आंख पर काम करना है, इस आंख को ही क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। ये चौथा। पांचवा, ये आंख क्या है, तीसरा नेत्र, टीवी, दिव्य टीवी है। इस टीवी में क्या देखना है, सीरियल, फिल्में, गीत, स्पोर्ट्स, क्या देखना है इस टीवी में, क्या देखना है, अपने 84 जन्मों की फिल्म को देखना है। बाबा ने कहा 21 जन्मों की, पर 84 की भी देख सकते हैं। इस फिल्म में दिव्य कहानी देखनी है, इस टीवी में आत्मा की कहानी देखनी है, इस टीवी में वो राज्य दरबार देखना है, वो नजारे देखने हैं, ताज और तख्त देखना है, जो चाहो वो देख सकते हो। ये मुरली चली है 85 की, अभी अभी टीवी आया है 82 में, घर घर में टीवी, किसी के घर ब्लैक एंड व्हाइट, किसी के घर कलर, जिनके घर ब्लैक एंड व्हाइट उनको ईर्ष्या उनसे, जिनके घर कलर, और जिनके पास कोई टीवी नहीं वो दूसरों के घर घर जाते हैं टीवी देखने के लिए। ये वो दौर था जब टीवी का बहुत बड़ा आकर्षण था संसार में, नया था एकदम टीवी। तो बाबा ने कहा ये दिव्य नेत्र ही टीवी है, जब फ्री हो तो इसको देखो। और संसार में जो देखते हो वो क्या है, डेंजर डांस, डेंजर डांस का उसको, अगर डांस ही देखना है तो कौन सा देखो, फरिश्तों का देखो और देवताओं का देखो, संसार का डांस देहभान का विस्तार है। वो डांस है ही नहीं, वो देहभान है, प्रदर्शन है। इसके लिए डांस यदि करना है तो ये मन का डांस है, ज्ञान का डांस, खुशी का डांस, देवताओं का डांस और फरिश्तों का डांस। तो ये टीवी है, और इसको चालू करने के लिए क्या चाहिए, स्विच, वो खराब ना हो। अगर खराब होगा तो कुछ भी दिखेगा नहीं। और स्विच कौन सा है, स्मृति का, याद का। कौन कौन सी बातें बुद्धि में रहती है सारे दिन, क्या याद रहता है कि भगवान आया हुआ है, क्या याद रहता है कि ये संगम युग है, अभी अभी मुरली थी सुहावना संगम युग, क्या याद रहता है कि अभी घर जाने का समय, क्या याद रहता है या विस्तार चालू है, ये भी करो वो भी करो, सांसारिक विस्तार करना चालू है, अपने मोह का विस्तार चालू है, इसके मोह में उसके मोह में, इससे बातें उससे बातें, इसमें फंसे है उसमें फंसे है, और अपने मोह को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम तो बहुत ही निर्मोही होता है, प्रेम अनासक्त होता है, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो मोह है। मोह की जड़ें धरती में है, प्रेम तो आसमान में है। जिसे हम प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम है नहीं, शायद प्रेम का तो अनुभव ही नहीं। जो हमारा विस्तार है वो मोह की दिशा है, मोह का विस्तार है। स्मृति स्विच है, बाबा ने कहा ये ऑन चाहिए तो ही टीवी में कुछ दिखेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, खर खर लाइन आएगी ऐसी ऐसी ऐसी। पुराने उस जमाने में 1980s में टीवी में गड़बड़ होती थी तो घर का एक बच्चा छत पर जाकर खड़ा रहता था, दूसरा सीढ़ियों पर, वो उधर से कहता था घुमाओ, और फिर जो सीढ़ी पर है वो घर पे बात करता था, अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है फिर घुमाओ, फिर एंटीना घुमा देते, फिर और घुमा देते, अभी अभी आगे, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी दिख रहा है। टीवी का क्रेज था वो दौर, कुछ और था, तब एक ही चैनल था बस, दूरदर्शन, ये सब बाद में आए 92 के बाद, तब तो एक ही चलता था बस। बाबा ने कहा ये दिव्य टीवी ही दिव्य दूरदर्शन है, इस टीवी में देखो, जो देखना है वो देख सकते हो। तो रोज सुबह सुबह इस टीवी को ऑन करके टीवी के सामने बैठ जाना है, रिमोट हमारे हाथ में, रिमोट कौन सा, स्मृति तो वो स्विच है, उसके बारे में सोचना। तो उसमें अपने परमधाम का पिक्चर इमर्ज करना, आत्मा जब परमधाम में है तो कैसी दिखती है, सतयुग में है तो कैसी थी, द्वापर में आई तो कैसी है, संगम पर कैसी है, और फरिश्ता कैसा होगा, अपने सारे रूपों को देखना। बाबा ने कहा था का पर्दा है, था का पर्दा, इस था के पर्दे को उठा देना है, मैं था ये पर्दा है, इस था के पर्दे को उठाना, उसको देखना, परमधाम का मेरा रूप क्या है, निराकार निर्विकार निर्लेप निराधार निर्वाण निज स्वरूप में स्थित, ये मेरा परमधाम का रूप, कहां हूं कैसे हूं। फिर सतयुग का रूप देखना, सारे सम रूप अपने। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है जाकर लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ जाओ, किसी भी चित्र के सामने बैठ जाओ और मन ही मन उस चित्र का वर्णन करना, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पुष्पक विमान, राजप्रसाद, राजमहल, क्या खेल खेल रहे, क्या खा रहे, कैसे चल रहे, कैसे उठ रहे, देवत्व के संस्कार इमर्ज करने, क्योंकि उन संस्कारों और हमारे बीच में बहुत फासला है। सतयुग त्रेता देव लोक क्रॉस कर लिया, उसके बाद में भयंकर द्वापर और कलयुग से क्रॉस कर हम यहां पहुंचे, जहां पर भयंकर विकर्म हुए हमारे हाथों से, अब यहां पर खड़े रहकर वहां के संस्कार इमर्ज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सतयुग के बारे में पढ़ना होगा, सतयुग के बारे में चिंतन करना होगा, सतयुग के बारे में सुनना होगा, सतयुग के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, सतयुग के चित्र को देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, क्या है कैसा है, मैं था मैं हो बनूंगा, वो संस्कार इधर ही है, सब कुछ इमर्ज हो जाने लगेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी उसको अपने सारे जन्म याद आने लगेंगे। तीसरे नेत्र पर जितने प्रयोग हुए हैं उसमें जाति स्मरण के प्रयोग बहुत सारे हैं, पूर्व जन्म की स्मृतियां, जैसे बुद्ध को दिखाया उसको अपने सारे जन्म याद आने लगते, महावीर को दिखाया उसको अपने सारे जन्म याद आने लगते हैं। हिप्नोटिक रिग्रेशन जिसको कहते हैं, महावीर के यहां दिखाया एक सन्यासी, अभी अभी दीक्षित हुआ, अभी अभी सन्यास जिसने लिया, राजमहल में रहता था, वैराग आ गया, संन्यास ग्रहण कर लिया और अब नंगे पांव घूम रहा है महावीर के साथ, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, और इतने मच्छर, मच्छरों ने योगियों को बहुत सताया है द्वापर से, ध्यान में बहुत बाधा डाली, कभी ऐसी फरश कभी वैसी, उसको खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। अब सोचता है ये नहीं चाहिए मुझे संन्यास, वही ठीक था, और रोज रात में प्लानिंग बनाता है कोई देखे ना तो भाग जाऊं आश्रम से। आश्रम तो था नहीं, घूमते रहते थे घुमक्कड़। और एक रात जब देखता है कोई भी नहीं है, बस अब भागने को ही था, तो महावीर खुद ही देख लेते हैं उसको, और उसको उसके सारे जन्मों की स्मरण कराते हैं कि इसके पहले जन्म में भी उसने ऐसी ही कोशिश की थी, नहीं हो पाया, शादी हो गई, वो दृश्य दिखाया, वो विवाहित जीवन दिखा दिया, कैसे द्वंद थे, कैसी पीड़ा थी, कैसा दर्द था उसमें, तब सोचता था कब ये सारे छूटू और संन्यास ले लू और वैराग धारण करूं और आत्म शुद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूं। वो सारे दृश्य दिखाए कि हर जन्म में भूले की, हर जन्म में विकारों में गया, हर जन्म में फंसा रहा शरीर में, अब अवसर मिला है। क्या अब भी फंसोगे? क्या अब भी वही करोगे जो अब तक किया? तब कहीं जाके चेतना जागृत होती है, तब तैयार होता है कि ये जीवन तपस्वी है, नहीं जाऊंगा, और नहीं जाता है। तीसरे नेत्र से सब कुछ देखा जा सकता है कि मेरे जन्म क्या हुए, कैसे जन्म थे, कहां फंसा था, जन्म 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 जन्म, इस जन्म में भी वही करूं, बाप बच्चों से भीख मांगते, एक ही जन्म केवल, दो भी नहीं, केवल एक, क्या पवित्र बन जाओ मेरी खातिर, फॉर माई सेक, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, इतनो सी तो चीज मांग रहा हूं, इतनो सी। तो बाबा ने कहा ये दिव्य नेत्र और ये दिव्य बुद्धि, ये क्या है? दिव्य प्राप्तियां है ये, अगर तुम्हारे पास है तो कुछ सोचने की और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं, फुर्सत नहीं, सब कुछ तुमको मिल जाएगा अगर ये दो चीजें हैं तो। तो इस दिव्य नेत्र की जागृति पर काम करना है, अपनी आंखों पर काम करना है, ये आंखें कहां क्रिमिनल हो जाती है, इन आंखों को क्या देखना है, क्यों शरीर को देखती है और क्यों शरीर इसको अच्छा लगता है, इस शरीर से ऐसा वैराग आ जाए कि चलते फिरते अनुभव हो कि जैसे चेतनाओं का संसार है, मणियों का आगार है, परमधाम नीचे अवतरित हुआ है, केवल आत्माएं हैं, यह देह तो है ही नहीं, मिट्टी मात्र है, देह का लगाव धीरे धीरे कम होते जाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा कम, और आत्मा सूखा नारियल, अभी गीला नारियल है, वो गिरी और खोल चिपका हुआ है, एक समय आए जो क्या बन जाए, सूखा नारियल, अलग अलग, ये शरीर अलग आत्मा अलग, आवाज आए चलते चलते अनुभव हो कि ये मैं आत्मा अलग ये शरीर अलग, और इस अनुभव को बार बार बढ़ाना है, विधि है सारे दिन भर, चाहे कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी सेवाएं हो, रूहानी ड्रिल करते रहना। बाबा ने कहा अति के समय अंत का अभ्यास करो, अति अर्थात सेवा की अति के समय, सेवा में एक्सट्रीमली बिजी है उस समय भी शरीर से डिटैच हो जाना, बार बार बीच बीच में मैं आत्मा अभी अभी गई परमधाम नीचे आई, अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, सारा पुरुषार्थ एक ही है, अशरीरी पन का अभ्यास। तो ऐसी ये पांच तुलनाएं की बाबा ने इस दिव्य नेत्र की, पहला सौगात शक्तिशाली बनाना है तीन बातों से, दूसरा ये क्या है, दूरबीन, अपनी दूरबीन को साफ रखना है, जो लोग कैमरा यूज करते हैं बार बार साफ करते रहते हैं अपने कैमरा को, जो फोटोग्राफर्स होते हैं बार बार साफ करते रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं उसकी सेहत ठीक है कि नहीं, अपने कैमरा की सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं। अगला ये दिव्य नेत्र क्या है, पावरफुल यंत्र है, बहुत शक्तिशाली यंत्र है। इस यंत्र को और पावरफुल बनाते जाना है कि जो केवल आत्मा ही दिखे उसको, दृष्टि पड़े, बाबा ने कहा नेचुरली आत्मा दिखे, प्रयत्न ना करना पड़े, ये शरीर है ये आत्मा, ये शरीर ये आत्मा, और ये होगा तब अंदर ही अंदर निरंतर आत्मा का चिंतन चालू है, आत्मा है कैसी, आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या उसका स्वरूप है, क्योंकि जो अंदर चिंतन चलेगा वही बाहर दिखेगा। अंदर शरीर का चिंतन चालू है, शरीर को सोच रहे कितना सुंदर है, तो बाहर भी शरीर जो है सुंदर नहीं पर दिखेगा सुंदर है, और वो खींचेगा, आकर्षित करेगा, ये सुंदर, ये काला, ये गोरा। आत्मा की तरफ देखना अपने आप कम हो जाता है जब दृष्टि शरीर की तरफ का चिंतन करती है, तो आत्मा अपने आप विस्मृत हो जाती है जब सारे दिन भर शरीर शरीर देखते रहते हैं। इसलिए बाबा ने एकदम मना कर दिया है, वो डेंजर डांस है टीवी और वो जो कुछ है उस संसार में, वो शरीर की दुनिया है, शरीर के इर्द गिर्द घूमता है वो मीडिया सारा के सारा सांसारिक। अगला अनुभव का ये नेत्र है, अगला लास्ट ये टीवी है, रूहानी टीवी है। तो सुबह सुबह इस टीवी को ऑन करना और अपनी ही जीवन कहानी को देखना कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या पार्ट प्ले किए हैं इस ड्रामा में, और अब मेरा वर्तमान क्या पार्ट है, और इस पार्ट को कैसे श्रेष्ठ बनाऊं, कैसे महान बनाऊं। तो यहां मुरली पूरी होती है, दो पार्टियां है। क्या कहा बाबा ने, सर्व संबंधों से बाप को याद करो, उसके प्यार में खो जाओ, और ये सहज हो, क्योंकि सहज ही क्या है, सहज ही क्या है, निरंतर है। जो सहज है वही निरंतर है, जो सहज नहीं है वो निरंतर नहीं हो सकता, कुछ समय चलेगा खींच तान के, कुछ दिनों के बाद टूट जाएगा, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो या खान पान या डाइट चेंज, कोई भी डाइट चेंज, अगर वो सहज नहीं तो लंबा समय नहीं चलता है, थोड़े दिन के बाद छूट जाएगा। तो सहज है तो निरंतर है। उसके बाद में एक लास्ट बात भी बाबा ने कही है, ऊंची स्थिति। दूसरी पार्टी में ऊंची स्थिति होगी तो क्या होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा विघ्नों का। जैसे धरती के ऊपर कोई चीज चली जाती है तो प्रभाव नहीं पड़ता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, वो बाहर निकल जाती है। तो अपनी स्थिति को ऊंची कर दो तो चीजें नीचे रह जाएगी, चीजों के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, विघ्नों के साथ, परिस्थितियों के साथ, व्यक्तियों के साथ कुछ करना ही नहीं है, उनको वहीं रहने दो, हम ऊपर उठ जाए वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो ऐसी ये दो पार्टियां हैं, ऐसे कैसे कैसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, ऐसे त्रिनेत्री आत्माओं को, ऐसे दिव्य नेत्र वाली आत्माओं को, ऐसे दूरबीन वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर टीवी देखने वाली रूहानी टीवी देखने वाली आत्माओं को, ऐसे अनुभव की नेत्रधारी आत्माओं को, ऐसे जो भविष्य का दिग्दर्शन करती है ऐसी आत्माओं को, ऐसे ऐसी पावरफुल शक्तिशाली यंत्र जिनके पास है ऐसी आत्माओं को, ऐसे जो परहेज करती है, ऐसे जो श्रीमत पर चलती है, ऐसे जो अटेंशन रखती है, ऐसी जो कायदे प्रमाण चलती है ऐसी आत्माओं को, ऐसे दिव्य गिफ्ट को धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऊंची स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे उद्धव नहीं गोपी बनने वाली आत्माओं को, केवल ज्ञान सुनना सुनाना नहीं अनुभव करने वाली आत्माओं को, अनुभव में मगन रहने वाली आत्माओं को। बाबा ने एक जगह ये भी कहा, ये जो दो गिफ्ट है इनका अनुभव करना ही वरदान है, इनका अनुभव करना ही क्या है, वरदान। तो इस दो वरदान को प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे स्मृति का मणका और निश्चय का पर्दा स्पष्ट रखने वाली, शक्तिशाली रखने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रीमत की परहेज, श्रीमत का दवा दुआ धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे था का पर्दा हटाने वाली आत्माओं को, ऐसे देवी डांस देखने वाली आत्माओं को या करने वाली आत्माओं को, और डेंजर डांस से मुक्त आत्माओं को। ऐसे अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, ये अनुभव करने वाली आत्माओं को, तीसरा अनुभव का नेत्र उसमें अभी अभी कल और आज का अनुभव करने वाली आत्माओं को, तो ऐसे ढेर सारे समान मुरली में है। और कोई आत्मा आए तो तुरंत उसको ज्ञान नहीं सुनाना चालू करना, धरनी नब्स और समय को देखकर ज्ञान सुनाने वाली आत्माओं को, नहीं तो पकड़कर अपना पंप ज्ञान का सीधा यहां नहीं लगा देना है, नहीं तो मूंज जाएगी आत्मा, ऐसी भागेगी कि वापस फिर कभी नहीं आएगी। तो रहम दिल बनकर रहम करने वाली आत्माओं को, तो ऐसी ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अब शांति।